بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو، بات چل رہی تھی غیبت اور اس کا علاج، کئی طرح کی باتیں ہوئی. گزشتہ جو بات تھی کل، وہ غیبت کہاں کہاں جائز ہے، غیبت کی جائز صورتیں، تو اس میں بات بتائی گئی کہ بھئی جہاں ضرورت ہے، کوئی دینی ضرورت ہو، کسی کے بارے میں کچھ بتانا ہو، جیسے محدثین نے راویوں کے حالات جو لکھے ہیں تو اس کے بارے میں آیا تھا. پھر فرمایا کہ غیبت کے ذریعے سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. جی، آخر میں ابھی آج بات ہوگی، وہی بات ہے، غیبت کا اصل علاج تواضع ہے. یہاں پر بات ختم ہوئی تھی ہماری، غیبت کا اصل علاج تواضع ہے. حضرت والے نے فرمایا کہ غیبت کا علاج بھی تواضع ہی ہے، مگر تواضع ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے جب تک تواضع حاصل نہ ہو، غیبت سے بچنے کے لیے فوری علاج یہ کرو کہ بدون سوچے کوئی بات نہ کیا کرو. جو بات کرو سوچ کر کرو، اس سے غیبت کم ہو جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد بالکل نہ ہوگی. اور اگر کسی وقت بے سوچے کوئی بات نکل جائے تو اسی وقت دو رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیا کرو. اس ملفوظ میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ غیبت انسان سے سرزد ہی نہ ہو، بالکل ختم ہو جائے غیبت، تو اس کا اصل علاج یہ ہے کہ دل میں تواضع پیدا کرو. اس وقت میں کوئی نیچا بننے کو تیار نہیں، ساری دنیا میں جھگڑا بڑا بننے کا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھو، بڑا بننے میں جھگڑا بہت ہے، نیچا بننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، اس میں کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا. ہاں، بڑا بننے میں تو کوئی نہ کوئی مقابلے میں، بولے میں بڑا، وہ کہتا ہے میں بڑا، لیکن نیچا بنو تو کوئی نہیں آتا. اچھا بولے چھوڑ دے گا. یاد رکھو، یہ میدان خالی پڑا ہوا ہے، اس میں ترقی بھی ہے. اس لیے ہمیشہ تو فرمایا دل میں توازو پیدا کرو. ہمیشہ یاد رکھو، غیبت توازو کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی. جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تب دوسروں کی غیبت کرتا ہے. توازو ہوگی، ارے بولے چھوڑ دو چھوڑ دو، نہیں نہیں بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، انسان یہ کہے گا. جی، تو فرمایا تب دوسروں کی غیبت کر. جس شخص کو اپنے عیوب کا دھیان ہو، اپنے عیب کا دھیان ہو، اس کی اصلاح کی فکر ہو، اس کو دوسرے کے عیوب بیان کرنے کی کہاں فرصت ہوتی. وہ تو اپنے درد میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ بری عادت ہے، کس طرح ان کو دور کروں. بس وہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا، تواضع والا بس اسی ادھیڑ پن میں مبتلا ہوگا. وہ دوسروں کے عجب کو کہاں دیکھتا پھرے گا. ہاں، اگر دل میں تکبر اور بڑائی ہے اور دوسروں کی تحقیر ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، اس کو اپنی فکر تو نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے عیوب کو دیکھتا پھرتا ہے کہ اس میں فلاں برائی ہے، اس میں فلاں برائی ہے، پھر ان برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے. لہذا غیبت کی اصل جڑ عجب اور تکبر ہے، غیبت کی اصل جڑ عجب اور تکبر ہے. دیکھا، جب یہ تکبر اور عجب ختم ہو جائے گا تو پھر غیبت کبھی سرزد نہیں ہوگی. اس لیے غیبت کا اصل علاج تکبر کا ختم کرنا اور تواضع کا پیدا کرنا. اب بتاؤ، کوئی ہم میں سے ہے کہ جو یہ کہہ سکتا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے؟ کوئی نہیں. یہ بیماری عام ہے جی، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. لیکن فوری علاج کیا بتایا؟ कि सोच सोच कर बात करो। अब हमारे बुजुर्गों की तवाजु को देखो, हजरत डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दारुल उलूम में तशरीफ लाए, उनकी जबानी एक वाकया सुना कि हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के बानी, खैरुल मदारिस मुल्तान के बानी ने फरमाया, जिन्होंने बनाया, फरमाया कि जब मैं हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाता तो बिला मुबालगा मुझे ये महसूस होता था इस मजलिस के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनमें सबसे कमतर और हकीर और बदहाल मैं हूं। हजरत थानवी के पास जाते और ये सब मुझसे अफजल है, बल्कि सब इंसान है और मैं बैल हूं। बैल समझते हैं? हाँ जी, बैल को इंग्लिश में कोई जानता हो तो लिख दे लफ्ज। जी ऑक्स, अच्छा हाँ, काउ उसका मुजक्कर, उसको बैल कहते। तो फरमाया ये सब इंसान है, हाँ मैं बैल हूं। फिर मुझे ख्याल पैदा हुआ कि मेरी ये हालत दुरुस्त है या नहीं। चुनाचे में हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो जामिया अशरफिया लाहौर के बानी है की खिदमत में हाजिर हुआ और जाकर अर्ज किया कि मेरा ये मामला है कि जब मैं हजरत वाला की मजलिस में आता हूँ कि मुझे ये महसूस होता है कि इस मजलिस में सबसे कमतर और हकीर मैं हूँ, मुझसे ज्यादा हकीर और कमतर कोई और नहीं नहीं है। तो हजरत मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि हालत तो मेरी भी है, हजरत मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि ये हालत तो मेरी भी है कि जब मैं मजलिस में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब हाजरीन से ज्यादा कमतर और बदहाल में ही हूं। तो हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम भी मेरे साथ इस हाल में शरीक हो गए, चले हजरत वाला से अपनी हालत बयान करते, चलो हजरत वाला से यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से हम अपनी हालत को बयान करते। चुनाचे दोनों हजरत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया कि जब हम मजलिस में बैठते हैं तो हमें ये ख्याल होता है कि इस मजलिस के अंदर जितने हाजिरीन हैं वो सब हमसे अफजल है और हम सबसे कमतर और जलील है और हकीर है। सुभान अल्लाह। हजरत वाला ने फरमाया कि कुछ फिक्र न करो। जवाब क्या फरमाया? जी हजरत ने फरमाया कि कुछ फिक्र न करो, अरे भाई मेरा भी यही हाल है। अब हजरत खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये तो मुरीद थे, शेख के पास गए, शेख खुद फरमाया मेरा भी यही हाल है, तुम फिक्र न करो, मैं भी यही समझता हूं। जब मैं मजलिस में बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं इन सब के मुकाबले में कमतर हूं और ये सब मुझसे अफजल है। देखा तवाजु, अल्लाह अकबर कबीरा। कहां गई आज ये तवाजु, कहां गई? मार्केट में मिलती ही नहीं है तवाजु, इसको ढूंढ के लाओ। ये आएगी मेहनत से, ये आएगी बुजुर्गों की जूतियां सीधे करने से, ये आएगी सोहबतों में बैठने से, ये आएगी जिक्र मुराकबा करने से। तो गिबत को खत्म करने वाली चीज तवाजु है। तवाजु ये नहीं है कि आदमी सिर्फ अपनी जबान से कह दे। हाँ एक नकली तवाजु भी होती है ना, जो आजकल हमारे पास है, नकली तवाजु, वो भी हजरत ने बताया। फरमाया तवाजु ये नहीं है कि आदमी सिर्फ अपनी जबान से कह दे कि आह कर नाकारा नाचीज है, यानी कहते हैं मैं तो गंदा हूं जबान से, ये तो आकर है ये नाचीज है। तो ये जो हम जबान से कह देते, फरमाया ये तवाजु नहीं है, बल्कि तवाजु ये है कि वाकईतन अपने अयूब पर अपनी इतनी निगाह हो, अपने ऐबों पर इतनी निगाह हो कि अपने अयूब के मुकाबले में दूसरे को अयूब नजर ही ना आए। ये है तवाजु। असली तवाजु क्या है? कि हमारे ऐबों पर हमारी इतनी नजर है कि दूसरों के अयूब नजर ही ना आवे। ये है तवाजु। वरना जबान से कह देना नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ है, आप ही का मक ये है वो है, ये जबानी तवाजु होती। ये जबानी है, दिल की तवाजु असल में तो यही है कि हमें किसी का ऐब नजर ही ना आए, अपने ऐब पर इतनी नजर हो। जिस दिन ये तवाजु पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह गीबत पास भी नहीं फटकेगी, करीब भी नहीं आएगी गीबत। इसलिए कि जब इंसान अपने को दूसरों से कमतर समझ रहा है और उसको अपने अयूब का इस्तेहजार है, कम समझना, कम इसलिए समझ रहा है कि बेचारे सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूं, कि मेरा ऐब मुझे पता है, इनको कहां पता है कि मैंने क्या 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 गुड़ खिलाए हैं और मैंने क्या क्या नखरे और क्या क्या काम किए हैं। अब जितने सुनने वाले हैं सब जानते हैं कि मैंने क्या काम किए हैं, वो मैं जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है कि नहीं। लेकिन हमारे अयूब पर हमारी नजर नहीं होती है, इसलिए दूसरों पर नजर चली जाती है। जब हम जवानी से लेकर अभी तक अपने ऐप पर नजर करेंगे कि मैंने तन्हाई में क्या क्या किया है और मैंने अल्लाह के कितने हुक्मों को तोड़ा है, मैंने कितनों को सताया है, मैं कितना बुरा हूं, ये मजमा जितना बैठा हुआ है, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह का महबूब बंदा है, मैं सबसे कमतर हूं। तो अपने अयूब को देखेंगे तो दूसरों को अच्छा समझना आसान होगा। जी, तो फरमाया तवाजु पैदा हो गई तो फिर कभी गिबत नहीं आएगी। इसलिए कि जब इंसान अपने को दूसरों से कमतर समझ रहा है, अपने को दूसरों से कमतर समझ रहा है और उसको अपने अयूब का इस्तेहजार है, तो वो दूसरों के अयूब को कैसे देखेगा? फिर दूसरे का ऐब देखेगा ही नहीं। जी, अपना ऐब देखना शुरू कर दो आज से। अभी हमारे अंदर कितना है, तो हमें, हम जहां कहीं भी जाएंगे ना, हमें हर एक अच्छा लगेगा जब अपने ऐब हमारे अंदर होंगे। इस वक्त हमारे ऐब भूल जाते हैं, कोई हमें सताएगा भी तो भी हमें क्या होगा, बराबर है, वो जो सता रहा है सही कह रहा है, इसलिए कि मैं ऐसा ही हूं मैं। तो आप देखो उसको गुस्सा नहीं, बल्कि वो समझेगा मैं ऐसा ही हूं और वाकईतन होता है। और अगर ऐसा नहीं हूं जैसा वो कह रहा है कि झूठा, बदमाश, ये चोर सब वगैरह, और मैं ऐसा नहीं हूं, तो उसके कहने से या उस पर मेरा गुस्सा होने से मेरा क्या नफा होगा? मेरा अल्लाह के यहां कोई इज्जत तो जाने वाली नहीं। तो ये दो बातों में से एक होगी, इसलिए हमेशा अपने ऊपर नजर करें तो कभी गुस्सा नहीं आता है। और उसको अपने अयूब का इस्तेजार है तो दूसरों के अयूब को कैसे देखेगा? लिहाजा अगर गिबत का जड़ से बिल्कुल या खत्म करना है तो अपने अंदर तवाजु पैदा करो। अब आप पूछोगे कि तवाजु कौन सी दुकान में मिलती है, हमें जरा उसका पता भी बता दो ताकि हम जाके खरीद ले, है ना? क्योंकि आपने जब इतना देखा, बोले गिब्बत से जान छुड़ानी है, तो याद रखो दुनिया की किसी मार्केट में तवाजु नहीं मिलती, ये अल्लाह वालों की मार्केट में मिलती है। हाँ जी, और वहां बैठकर खरीदी नहीं जाती है, वहां जाकर सीखी जाती है। इसको बेचते नहीं है कोई भी कि कोई पकड़ा दिया, बल्कि ये है सीखी जाती। अब तवाजु कैसे पैदा करे, तवाजु पैदा करने का तरीका क्या है, तो सुनिए, तवाजु पैदा करने का तरीका ये है कि अपने अयूब का इस्तेहजार करो। क्या करना? अपने ऐब को देख। अभी ये सबक सुनते सुनते हर एक अपने ऐब पर जरा चला जावे, जितने सबक सुन रहे हैं वो अपने ऐप को जरा देखे तो कितना आंखों से आंसू आ जाएंगे कि मैं कितना बुरा हूं। तो अपने ऐप को देखे। तो अब कभी कभी बैठकर अपने अयूब पर नजर करें, जब गुस्सा आ जाए तो अपने अयूब पर नजर करें, कि मैं हूं, तो फिर हमें क्या आसान हो जाएगा तवाजु पैदा करना। एक तो अय्यूब का इस्तेजार करो, ये जो हर वक्त अपनी बढ़ाई का ख्याल दिल में जमा रहता है कि हम ऐसे, हम चुमा दिगरे नेस, हम जैसा कोई दूसरा नहीं है, और अगर हमारे जैसा कोई बनने की कोशिश करेगा तो हम उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, उसको गिराएंगे। आज होता है ना, ये तो मुर्गों वाली लड़ाई हो जाती है फिर। तो हम तो ये जानवरों की तरह हो गए फिर, क्योंकि जानवरों में यही लड़ाई होती है। जंगल का शेर होता है ना, तो कहता है क्या है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और अगर मुझसे बड़ा कोई बनने की कोशिश करेगा तो उसको मार मार के भगाएगा, बोले मैं बड़ा। अब इंसानों में भी अगर कोई बड़ा बनता है तो जानवर वाली सिफत हुई कि नहीं हुई? इन्हें इंसान बनो। इंसान इंसान क्या होता है? अंबिया अलैहि सलातो सलाम की जो सिफात है, सहाबा की जो सिफात है, वो सिफात इंसान बनाती है। ये सिफत बड़ा होना, ये तो जानवर पना है कि जानवरों में भी अपने अपने इलाके के बड़े होते हैं। हर एक एक बड़ा हुआ बना होता है। हमारा बड़ा अल्लाह है, याद रखना। तो फरमाया हम चुमा दिगर है, हम जैसा कोई दूसरा नहीं। और ये जो हमें भी कभी अपने इल्म पर घमंड होता है ना, कभी कभी इल्म पर घमंड होता है, तकब्बुर, कभी अपने तकवे पर तकब्बुर होता है, तो वो असली तकवा क्या हुआ? अगर तकवे पर तकब्बुर आया तो समझो तकवे में भी कोई नकली है। इसलिए कि तकवा हमेशा तवाजु पैदा करता है, तो तकवे पर घमंड हो जाता है, यानी जाहिरी तकवे पर। कभी अपने माल और दौलत पर तकब्बुर पैदा होता है, कभी अपने सेहत पर तकब्बुर पैदा होता है, कभी अपने माल और दौलत पर, कभी अपने शक्ल और सूरत पर तकब्बुर पैदा होता है। ये तकब्बुर ही इंसान को तबाह कर देता है। तो क्या क्या होते हैं देखो ना। और ये तो आएगा, इसका इलाज। इसीलिए तो कहते हैं कि एक इंसान इल्म सीखता है। अब इल्म तो अच्छी चीज है, सीखना चाहिए, लेकिन इस इल्म का साइड इफेक्ट होता है, और वो क्या है? तकब्बुर आ जाता है। तो अब वो उसको पता नहीं, उसने सिर्फ इल्म सीख लिया और उस इल्म की वजह से एक बीमारी पैदा हो गई कि इल्म नहीं सीखा था उस वक्त, एक सिफत अच्छी थी, वो तवाजु थी। जब इल्म सीख लिया तो वो सिफत खत्म होकर तकब्बुर आ गई, और तकब्बुर आकर इतना तकब्बुर आता है कि फिर दूसरों से भी बढ़ चढ़ कर चलते हैं, हालांकि वो इल्म भी कामिल नहीं मिला है, वो उसका एक जर्रा सिर्फ मिला, और उस पर भी इंसान आगे बढ़ता है। तो याद रखो, वो जहालत जिसमें तवाजु हो, वो तकब्बुर जो इल्म सीखने के बाद आए, तो वो जहालत बेहतर है उस इल्म से। क्यों? कि इंसान जन्नत में तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं जाएगा, तवाजु की बुनियाद पर चला जाएगा। यहां कौन सा इल्म है? ये इल्म से मुराद नवाफिल इल्म, जो फराइज है, मसाइल के, या वुजू के, या रोजे के, या जकात के, जो फर्ज इल्म है, उस फर्ज इल्म को सीखने पर कभी तकब्बुर नहीं आएगा, ये याद रखना। तो वो तो सीखना ही सीखना है। यहां इल्म से मुराद वो नफल इल्म, के जहां तकब्बुर आता है वो नफल इल्म पर आता है। फराइज तो ये हुक्म है, फराइज पर तकब्बुर आता ही नहीं है, तो वो इल्म पर, तो वो इल्म जिससे तकब्बुर बढ़े, तो उससे अच्छा है कि वो जहालत, यानी वो नवाफिल से, वरना फराइज से जहालत रहेगी तो इबादत भी सही नहीं होगी। इसलिए अपने इल्म पर घमंड भी होता है, कभी तकवा, कभी मालो दौलत। मालो दौलत अच्छी चीज है, माल जब आता है तो उसका भी साइड इफेक्ट तकब्बुर आता है, लेकिन उस माल के अंदर जो तकब्बुर है, अब उसको खत्म करने के लिए फिर सीखना पड़ता है। इसमें भी माल जो जरूरत का माल होता है, जरूरत, तो उस पर इंसान कभी घमंड नहीं करता। जो जरूरत से जायद माल होता है उसी पर तकब्बुर होता है। हर चीज में यही है इंसान की हकीकत। एक बुजुर्ग से एक नौजवान ने कहा, भाई देखो किसका कैमरा ऑन है और उसका माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कर दे। बार बार लिखा जा रहा है लेकिन नहीं समझ रहे, नहीं आता है तो बाद में फिर सीख ले कि कहां बंद करना, कैसे बंद करना। खैर सुनो, एक बुजुर्ग से एक नौजवान ने कहा कि जानते नहीं मैं कौन हूं? जानते नहीं मैं कौन हूं? एक बुजुर्ग से एक नौजवान ने कहा कि जानते नहीं मैं कौन हूं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, हाँ हाँ मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। वो भी अल्लाह वाले थे। कहा तो अगर कहो तो बता दू, अगर तुम कहो कि मैं कौन हूं तो मैं अब आपको बता दू। चुनाचे उस बुजुर्ग ने फरमाया, अव्वलु का नुतफतुन कजीरतुन व आखिरु का जीफतुन कजीरतुन व अंत फीमा बैन जालिक तहम तहमलु तहम तहम्मलुल अजरतु, तेरा आगाज। अब सुनो उसका तर्जमा, फरमाए तेरी इब्तिदा तो यह है कि तू एक गंदे नुत्फे से पैदा हुआ, गंदे कतरे से पैदा हुआ है, ये तो तेरी इब्तिदा है, मैं जानता हूं तू कौन है। हाँ, गंदे कतरे से पैदा हुआ और तेरा अंजाम इंतहा यह है कि तू बदबूदार और मुर्दा हो जाएगा, ये तो तेरा एंड है और ये तेरी इब्तिदा है। और यहां तक हत्ता कि तेरे घर वाले भी, इतना वो मुर्दार और बदबूदार हो जाएगा, तेरे घर वाले भी तुझे रखने को तैयार नहीं होंगे। और जब पैदा हुआ है, जब से लेकर मौत तक जो दरमियानी टाइम है, दरमियान का अरसा है, उसमें तू क्या करता है, गंदगी के टोकरे उठाए फिर रहा है। क्या करता है, गंदगी को उठाए फिर रहा है। तो तू कहता है जानते हो मैं कौन हूं, तो हाँ मैं जानता हूं तू कौन है, तू पहले भी गंदा था, बाद में भी गंदा होगा, और दरमियान में गंदगी उठाकर फिर रहा है, ये तू है। ये जो खाल है, ये जिल्द जो जिस्म पर है, इस खाल को, जिल्द को क्या कहते हैं, स्किन। हाँ, ये जो स्किन जिस्म पर है, इस स्किन को अल्लाह ताला ने सातिरुल उयूब बना रखा है कि तेरे ऐबों को छुपा रखा है इस जिल्द ने। अगर ये खाल, ये स्किन जरा सी छिल जाए तो अंदर नजासत ही नजासत भरी हुई, कहीं खून है, कहीं पीप है, कहीं पेशाब है, कहीं पाखाना है, ये सब नजासतें उठाए फिर रहा है। ये हकीकत है हमारी, ये हकीकत है हमारी, मगर खुद को बड़ा समझ रहा है, और तकब्बुर के ये ख्यालात फिर इंसान को गीबत पर आमदा करते हैं, उबारते हैं, तैयार करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिहाजा गीबत का असल इलाज ये है कि अपने अंदर तवाजु पैदा करे। जब तवाजु पैदा हो जाएगी, जब तवाजु पैदा हो जाएगी, तो फिर इंशाअल्लाह किसी की गीबत नहीं होगी, फिर किसी की गीबत नहीं होगी। अलबत्ता जहां दीनी जरूरत हो वहां गीबत जायज है। मसलन किसी को नुकसान से बचाना है, आप उसको बता दे कि फला शख्स से होशियार रहना, ये मामला का साफ नहीं है, तो ये गीबत में दाखिल ही नहीं। अब तवाजु कैसे आएगी, तो सुनो, तवाजु के लिए सोहबते शेख, तजर्बा यह है कि रगड़े खाए बगैर तवाजु पैदा नहीं होती। रगड़े खाए बगैर मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। मेहंदी, मेहंदी लगाते हैं ना, वो मेहंदी कैसे इसके रंग आते हैं हाथों में, ये बहुत घिसी गई है, डायरेक्ट लगाते तो कुछ ना होता, इसलिए कहते हैं मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, उसकी रगड़ाई होती है जब जाके उसका रंग होता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, कि दाना अगर सही सालिम रहता है तो फिर उसमें से कुछ नहीं बनेगा, बीन्स, और इस बीन्स पर जब रगड़ाई होती है, वो सड़ता है, मिटता है, दबता है जमीन के अंदर, तो फिर वो उसमें से एक फल निकल, इसमें से एक दरख्त निकलता है, ट्री निकलती है। तो इसलिए याद रखो, एक इंसान भी अगर इंसान बनना चाहता है तो उसको भी ऐसी ही रगड़ खानी पड़ेगी, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, जैसे वो बीन्स को, वो दाने को मिटना पड़ता है जमीन के अंदर, ऐसे नीचे जाना पड़ता है, उसके बाद एक ट्री ऊपर आती है, तो इंसान को भी एक नीचे जाना पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला उसको उठाएंगे। तो फरमाया रगड़े खाए बगैर तवाजु पैदा नहीं होती। दरअसल बात यह है कि इंसान के दिमाग में खन्नास होता है, इंसान के दिमाग में खन्नास होता है, और वो खन्नास ये है कि इंसान अपनी राय को बाला समझता है, ऊंची समझता है। आता है ना कुरान में, मिनल जिन्नति वन्नास, कुल आऊदु बि रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, आया ना खन्नास। अब वो खन्नास कभी जिन्नातों में से होता है, कभी इंसानों में से। खन्नास अल्लदी युवस्विसु फी सुदूर इन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, तो इंसानों में भी खन्नास होते हैं। तो या वो है कि फरमाया हमारे दिमागों में खन्ना, हमारा दिमाग में खन्नास होता है। वो खन्नास ये है कि इंसान अपनी राय को बुलंद समझता है, अपनी सोच को बिल्कुल सही समझता है, कि जो मैं सोच रहा हूं ये सही है। इसीलिए कुरान में ऐसे लोगों से पनाह मांगी गई है कि अल्लाह ताला से पनाह मांगो ऐसे इंसानों से भी जो खन्नास की शक्ल में है, इंसान की शक्ल, उनके दिमाग खन्नास है। तो फरमाया ये दूसरा जो सोच रहा है ना, तो फरमाया जो मैं सोच रहा हूं ये सही है और दूसरा जो सोच रहा है वो गलत है। जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो ये कह रहा है वो गलत है। जी, अपनी सोच को बिल्कुल सही समझता है। जब इंसान इस सोच और फिक्र को कहीं जाकर इस तरह फना नहीं करेगा, ये अपनी सोच को जब तक मिटाएगा नहीं, फना नहीं करेगा कि जो मैं सोचता हूं वो गलत है और जो आप कहते हैं वो सही है, यानी मिटाने मिटाएगा, तो उसकी अलामत क्या है कि फिर वो क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे सोच में भूल हो सकती है, आपकी सोच पर अमल कर ले। फरमाया जो मैं सोचता हूं वो गलत है, जो आप कहते हैं वो सही है, चाहे मुझे आपकी सोच कितनी ही गलत और बुरी मालूम हो रही हो, दलील के खिलाफ मालूम हो रही हो और बिदाहत के खिलाफ मालूम हो रही हो, लेकिन मैं आप ही की बात मानूंगा। जब इस तरह अपनी सोच और फिक्र को नहीं मिटाएगा, उस वक्त तक तवाजु पैदा नहीं होगी और तकब्बुर खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा उसूल बता दे। फरमाया शेख के पास भी अगर जाओ, तो जाने के बाद शेख के पास भी अपनी सोच से मत चलो। फरमाया अपनी सोच को खत्म, क्योंकि अभी तक तो बड़ाई क्या दी, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, दूसरा कह रहा है गलत। अब तवाजु पैदा करना है, तो अब ये सोचो कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है और ये जो कह रहे हैं वो सही है। बस, चाहे वो मुझे चाहे कितनी बुरी मालूम हो, चाहे कितनी यानी कड़वी मालूम हो, उस पर मुझे कोई दलील भी मालूम ना हो, फिर भी मैं इनकी बात मानूंगा। ये तवाजु है, वरना आजकल तो दलील का बहुत जोर है ना। ये दलील दलील जो है ना, ये भी एक बीमारी अजीब पैदा हो गई, ये भी तकब्बुर की एक बीमारी है। कुछ बात करो तो बोले दलील लाओ, ला हौला वला कुव्वत, ये दलील क्या मांग रहा है? अभी तो तरबियत हुई नहीं। दलील मांगने का हक तो उसको है कि जिसकी तरबियत हो चुकी है, ये क्या दलील मांग रहे। देखो यहां क्या कह रहे हैं कि फरमाया दलील के खिलाफ मालूम हो रही हो, देखो आपकी सोच कितनी ही गलत और बुरी मालूम हो रही हो। फरमाया तवाजु क्या है, जो मैं सोचता हूं वो गलत, जो आप कहते हैं वो सही, चाहे मुझे आपकी सोच कितनी ही गलत मालूम हो, बुरी मालूम हो, दलील के खिलाफ मालूम हो, हिदायत के खिलाफ मालूम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप ही की बात मानूंगा। जब तक इस तरह अपनी सोच और फिक्र को नहीं मिटाएगा, उस वक्त तक तवाजु पैदा नहीं होगी और तकब्बुर खत्म नहीं होगा। इसलिए अब जो हर जगह पर दलील मांग रहे हैं, अब उनमें तवाजु कहां से आ सकती है? उन्होंने तो पहले इसका इनकार कर दिया कि बगैर दलील के हम कोई बात नहीं मानेंगे। फिर दलील तो मांगते मांगते फिर क्या कहेंगे, हमें दलील भी चाहिए, तो फिर बुखारी शरीफ की ही दलील चाहिए, दूसरी दलील भी नहीं चलेगी। और बुखारी शरीफ उसने पढ़ी भी नहीं होती है, और कहेगा कि बुखारी की दलील लाओ। अब ये भी एक अजीब चीज, अब ये सब मुतकब्बिर लोग होते हैं। जी, अल्लाह हम सब की ऐसो की सोहबत से भी हिफाजत फरमाए, ऐसो की दोस्ती से भी हिफाजत फरमाए। इसलिए याद रखो, तवाजु पैदा करना है। तवाजु वाला हमेशा दलील नहीं मांगा करता, क्योंकि वो तो अपनी इस्लाह। इसीलिए देखो, आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास दवा लेने गए होंगे और डॉक्टर ने तीन चार गोली आपको दे दी, लेकिन आपने उसे दलील मांगी है कभी कि डॉक्टर साहब एक काम करो, पहले तो ये बताओ कि ये दवा कहां से ले, आपकी कौन सी किताब में लिखा हुआ है और कौन सी जगह से साबित है, बोले मुझे बताओ। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, काम कर, तो दवा इधर रख ले और तू जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पहले दिमाग को सही करा। क्या है कोई डॉक्टर की दवा की दलील मांगे? वो बगैर दलील के ले लेता है, और जब बात कोई आलिम कहे तो कहता दलील दो। ला हौला वला कुव्वत, तो ये क्या है, कोई शेख कहेगा तो दलील दो? ये भी रूहानी डॉक्टर है। जब वो जिस्मानी डॉक्टर की दवा बगैर दलील के मान लेते हैं तो रूहानी डॉक्टर की दवा के लिए क्यों दलील मांगते हो? दलील मांगना ये खुद इस बात की अलामत है कि तुम इस्लाह नहीं मांग रहे हो और इस्लाह नहीं चाह रहे हो। डॉक्टर के पास जो इस्लाह चाहेगा, जो जिस्मानी सेहत चाहेगा, वो दलील नहीं पूछेगा, शुक्रिया अदा करके ले आएगा, उसको खाएगा, नफा होगा, इत्तला देगा, बस उसका काम इतना। हालांकि उसको लग रहा है कि यार ये दवा तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ले लेगा। अल्लाह, इसलिए याद रखना कि जो वहां दलील नहीं मांगते तो फिर यहां क्यों दलील मांगते हो। तो आज दीन के मामले में तो खेल बना दिया, और अपनी सेहत के मामले में तो हो, किसी डॉक्टर साहब नहीं पूछते। कोई ऑपरेशन के लिए जाता है तो पहले दलील बताओ, आप ऑपरेशन कैसे करेंगे और उसके उसके अंदर कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, उस टूल्स को कहां से खरीदा होगा, उसके सबूत कहां से है, कोई मांग रहा है? कोई नहीं मांगता, चुपचाप पैसे भी देते हैं, काम भी कराते। अरे अल्लाह वाले ही रह गए हैं कि उनके पास ही हर चीज मांग रहे हैं, उनकी जिंदगी देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में जरा खराबी आ गई तो फिर उनको छोड़ देते हैं। क्या डॉक्टर शराबी होता है? कभी डॉक्टर को छोड़ा है? हाँ, उसके हाथ में सेहत है, हम उससे अपना इलाज करा लेते हैं, उसकी प्राइवेट जिंदगी है, वो जाने, उसका काम जाने। इसी तरीके से हमें सारे दलाइल से हमें पता चल गया कि ये इत्तिबाए यानी ये शेख है और ये अल्लाह वाले हैं। अब उससे हम अपना इलाज शुरू कर दे, अब उनके ऐब और नुक्स पर नहीं जाना है, पब्लिक जो बात कर रही है उसको नहीं देखना है कि क्या बात कर रही है, हमें अपना काम कराते जाना है, हमें नफा हो रहा है। आप सुनो आगे। अल्लाह ताला शेखुल हदीस हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। जब मेरे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो हजरत शेखुल हदीस साहब ने बहुत मुफस्सल खत मुझे और भाई साहब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब मद्दजिल आली को लिखा। इस खत में बहुत सारी नसीहतें फरमाई, लेकिन एक नसीहत ये फरमाई, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि साहबजादगी का सूर बहुत देर से निकलता है। सूअर, साहबजादगी का जो घमंड, सूअर यानी जो घमंड होता है ना कि मैं तो इतने बड़े मुफ्ती का बेटा हूं, ये होता है ना, मैं तो इतने बड़े माल वाले का बेटा हूं, ये साहबजादगी का, मैं तो बादशाह का बेटा हूं, ये होता है। तो हजरत ने उनको खत लिखा, फरमाया ये साहबजादगी का जो 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 खन्ना जो भरा हुआ होता है तकब्बुर, ये बहुत देर से निकलता है, यानी किसी बड़े आदमी के बेटे होने की वजह से दिमाग में एक खन्नास पैदा हो जाता है, उसको सुअर कैसे ताबीर फरमाया, और खन्नास का मतलब तकब्बुर है, खन्नास का मतलब तकब्बुर है, और ये सुअर बहुत देर में निकलता है, यानी दूसरे अमराज का इलाज तो जल्दी हो जाता है, दूसरी बीमारियों का इलाज जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका इलाज बहुत देर से होता है। बहरहाल इस खत के जरिए इस तरफ हमें मुतवज्जे फरमाया कि इसकी फिक्र करनी चाहिए कि किसी तरह ये मरज निकल जाए, और फिर फरमाया कि जब कोई शख्स अपने आप को किसी के सामने फना कर दे, फिर क्या फरमाया उसके बाद, जब कोई शख्स अपने आप को किसी के सामने फना कर दे और रगड़े खाए, जब ये निकले, जब तक ये न निकले उस वक्त तक रास्ता नहीं खुलता, जब तक ये न निकले उस वक्त तक रास्ता नहीं खुलता। और वाकईतन बिल्कुल सच बात कि जब अंदर से ये मैं नहीं निकलती ना, मैं करता हूं, ये नहीं निकलती है तो जब तक रास्ता भी नहीं खुलता है आगे जाने का, अल्लाह तक जाने का। हम अल्लाह तक जाने का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं लेकिन रास्ता मिलता ही नहीं है, इसलिए कि मैं निकालना जरूरी है और मैं बगैर सोहबत के निकलेगी नहीं। इसलिए फरमाया कि अपने आप को किसी के सामने फना कर दे, हजरत शेख की नसीहत, अपने आप को, ये सिर्फ उनको नहीं है, ये हजरत फरमा रहे हैं, उसका मतलब तमाम इंसानों को भी नसीहत है कि जब तक अपने आप को किसी के सामने फना कर दे और रगड़े खाए, जब तक ये न निकले उस वक्त तक रास्ता नहीं खुलता। इसी तरह ये तो साहबजादगी का सूअर था, तकब्बुर था, और एक तकब्बुर इल्म का होता है, इसी तरह इल्म का भी सुअर है कि हम आलिम हैं, और ये आलिम होने का जो घमंड है ना, तकबुर, ये भी बड़ा खतरनाक है, याद रखना। और आज तो थोड़ा बहुत इल्म सीखने के बाद भी सब कहते हम तो आलिम है, आलिम है, आलिम है, और सब कहना भी शुरू कर देते, हाँ ये आलिम मौलाना मौलाना शुरू कर देते। अरे मौलाना है या नहीं पहले इसकी तो तहकीक कर लिया करो। मौलाना जैसे लिबास पहनने के बाद मौलाना कह देना, मौलाना किसको कहते हैं पता है, उसके कितने रगड़े खाने पड़ते हैं, और कह दिया तो फरमाया ये तो उसमें भी थोड़ा सा इल्म सीखा है और तकब्बुर आ गया। पूरा आलिम होता है उसके अंदर भी तकब्बुर होता है। ये आलिम होने का जो घमंड है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है, और ये भी देर से निकलता है। जब तक अपने आप को दूसरे के सामने फना न कर दे, जब तक अपने आप को दूसरे के सामने फना न कर दे, उस वक्त तक ये नहीं निकलता। इसलिए आलिम को, खुसूसन जो सही मानों में अपने इल्म को अपने असातिज़ा से पढ़ा है, उनको इल्म से निकलने के बाद फिर जरूर बुजुर्गों की सोहबत में जाकर अपने आप को फना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो पढ़ाने के लिए बैठेंगे तो अल्लाह रास्ता खोलता चला जाएगा। और ये आजीज जो आपके सामने बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के पास उनकी सोहबतों में बैठकर अल्लाह ताला ने वाकई रास्ता खोला, और कुछ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, वो उन बुजुर्गों की दुआ है और उनकी सोहबत की बरकत है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। और अगर ये दोनों जमा हो जाए कि इल्म भी हो और साहबजादगी भी हो, अब तो देखो वाकईतन वो तो आलिम भी थे, मुफ्ती जिनकी बातें हम पढ़ रहे हैं कितने बड़े आलिम थे, और फिर बड़े बड़े आलिम के बड़े बेटे भी थे। तो फरमाया अगर इसमें भी तकब्बुर है, साहबजादगी में भी तकब्बुर है, जब दोनों जमा हो जाए तो इल्म भी हो और साहबजादगी भी हो, फिर तो सुअर दर सुअर जमा हो गए, तकब्बुर दर तकब्बुर जमा हो गए। बिग तकब्बुर हो गए। इसका इलाज आसान नहीं है। अब डबल तकब्बुर हो गया, इसका इलाज आसान नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि कहीं रगड़े खाए। अब कहीं रगड़े खाए, अपने आप को पामाल करे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काल रा बगोर बगुजार, काल रा बगुजार साहिबे हाल शो, काल रा बगुजार साहिबे हाल शो, पेशे मर्दे कामिले पामाल शो शो, पेशे मर्दे कामिले पामाल शो। यानी पामाल के माना यह है कि तुम्हें पांव से रौंदा जाए। पामाल का माना कामिले पामाल हो, पामाल का माना है यानी पांव से रौंदा जाए, यानी हमारे ऊपर पांव रखा जाए। है कोई तैयार ऐसा पामाल होने के लिए? ये मिसाल बता रहे कि हमारे ऊपर पांव से रौंदा जाए, पांव से चला जाए। पांव से रौंदे जाने का मतलब यह है कि चाहे तुम्हारे दिलो दिमाग में बात नहीं आ रही है, अकल और बदाहत के खिलाफ वो बात मालूम हो रही है, लेकिन फिर भी बड़े की बात के सामने तुम अपने आप को इस तरह झुका दो, बड़े की बात के सामने तुम अपने आप को इस तरह झुका दो जैसे पांव में रौंदा जा रहा है। जैसे एक आदमी जमीन पर लेटा, उस पर पांव रखकर जावे, तो अब बताओ वो उसको कुछ नहीं हो तो कैसा अपने आप को, कहते हैं उसको पामाल कर दिया, पामाल बिल्कुल नीचा कर दिया, बोले मेरे ऊपर तुम पैर रख दो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो ये है कि हमारे, यानी जब हम शेख कामिल जो बात कह दे, तो चाहे हमारी समझ और अकल के खिलाफ हो, उस बात को भी हमें मानना है और दिल को पामाल करना है, झुका दो। जब तक उस पर अमल नहीं होगा, उस वक्त तक ये तकब्बुर दिमाग से नहीं निकलेगा। लिहाजा जब तक तकब्बुर दिल में मौजूद रहेगा, जब तक तकब्बुर दिल में मौजूद रहेगा, हसद भी रहेगा, गिबत भी रहेगी, बुग्ज भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, जब तकब्बुर चला जाएगा, तवाजु पैदा हो जाएगी, उस वक्त सारे अमराज भी चले जाएंगे। देखा तकब्बुर से कितनी कितनी बीमारियां पैदा हो रही है। अल्लाह क्या के फरमाया, जब तकब्बुर दिल में मौजूद है तो हसद भी होगा, गीबत भी होगी, बुग्ज भी होगा, गुस्सा भी होगा। हसद, गीबत, बुग्ज, गुस्सा और तकब्बुर, पांच बीमारियां। और जो आपको मुराकबा दिया गया है उस मुराकबे में ये पांचों बीमारियों का इलाज है। याद रखना, ये मुराकबा जो दिया गया है उसमें पांचों बीमारियों का इलाज है, लेकिन आगे बढ़ने वाले कोई नहीं है। बाजे ने तो लिया ही नहीं है, अगर उनके मैसेज आएंगे हम उनको भी दे देंगे। तो ये है कि मुराकबा अगर करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सारे पांचों बीमारियां निकल गई तो फिर छोटी छोटी और भी बीमारियां चली जाएंगी। अब आगे सुन, लेकिन ये तवाज़ु और इंकिसारी एक दो दिन में पैदा नहीं होगी, इसके लिए मेहनत और मशक की जरूरत है और किसी शेखे कामिल की सोहबत की जरूरत है। बैत होकर शेखे कामिल से अपना इलाज बाकायदा कराने की जरूरत है, तब जाकर तवाज़ु पैदा होती है। इसलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि जब तक ये बात हासिल न हो, यानी तवाज़ु न हो, उस वक्त तक ये करे, जब तक तवाज़ु न हो ये करे कि बेसोचे बात न करे, और अगर कभी गीबत हो जाए तो अपने ऊपर जुर्माना मुकर्रर करे। एक जुर्माना का बयान पीछे गुजर चुका कि एक वक्त का फाका करे, यहां एक दूसरा जुर्माना बयान फरमाया कि दो रक्का सला तो तोबा पढ़ लिया करो। इस तरह करने से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए, दुनिया में कोई काम मेहनत के बगैर नहीं होता। देखो, मेहनत, खाली सोचो और सोचकर उसके ऊपर बातें करो, हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उससे काम नहीं होता है। याद रखो, मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ती है। महज आरजू कर लेने से, उम्मीदें कर लेने से, ख्वाहिश कर लेने से काम नहीं बनता। आरजुओं से फिरा करती है तकदीरें कहीं, यानी सिर्फ आरजू कर लेने से तकदीरें नहीं बदला करती, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक देहाती का किस्सा, जैसे एक देहाती का किस्सा है, हजरत वाला ने लिखा है कि एक देहाती बैठा हुआ अपनी देहाती जबान में, अपनी देहाती जबान में ये कह रहा था कि यूं जी करे, ढेर सारा दूध हो और ढेर सारा गुड़ हो, और मैं ढेर सारे दूध में ढेर सारा गुड़ डालकर अंगड़ उंगली से उसको चलाऊं और फिर खूब पीऊं, यूं जी करे मेरा। तो किसी ने उस देहाती से कहा कि तेरा यूं जी तो करे, लेकिन तेरे पास कुछ है भी? अब देखा, वो कह रहे मेरे पास इतना सारा दूध हो और इतना सारा गुड़ हो, मैं उसके अंदर यूं डालू, उंगली से यूं हिलाऊ और यूं पीऊ। तो किसी ने पूछा कि भाई तू जरा सोच रहा है तो तेरे पास कुछ है भी? तो उसने कहा, मेरे पास तो उंगड़ उंगली है, उंगली, दूध तो था नहीं, तो उंगली है, यानी न दूध है न गुड़ है, बस उंगली है। अब वो उस उंगड़ के बल बोते पर आरजू कर रहा, अब वो उंगली के बल बोते पर क्या कर आरजू कर रहा कि दूध भी होता, गुड़ भी होता और उंगली से यूं यूं हिलाता। तो फरमाया उंगली है और उस पर सब सोच रहा था। हजरत वाला फरमाते, जैसे वो बेवकूफ उंगली की बुनियाद पर ये आरजू बांध रहा था, हालांकि सिर्फ आरजू बांधने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही हम भी इस्लाह की महज उम्मीद बांधा करते। हाँ, इस्लाह करनी है, करनी है, सब कहते हैं, तो इस्लाह की उम्मीद बांधा करते हैं। अरे ये देखो तुम्हारे पास कुछ अमल है या नहीं, अगर नहीं है तो उसके हुसूल के लिए कोशिश और मेहनत करो, तब जाकर वो हासिल होगा। लिहाजा अगर कोई काम महज आरजू कर लेने से नहीं होता, ताकि काश मैं ऐसा हो जाओ, काश मैं नेक हो जाओ, काश मैं मुत्तकी बन जाओ, काश मैं गिबत छोड़ दू, महज तमन्ना करने से और आरजू करने से बात नहीं बनती। हदीस शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आजिज अल आजिजु मन इत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। आजिज वो शख्स है जिसने अपने आप को ख्वाहिशात नफसानी के पीछे छोड़ा रखा है। ख्वाहिशात जिस तरह ले जा रही है वो जा रहा है, कोई रोक और लगाम नहीं, लेकिन अल्लाह ताला पर तमन्नाएं बांध रहा है। क्या कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है और माफ कर देगा, ऐसा बंदा आजीज है। लिहाजा महज तमन्ना और आरजू करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि तमन्ना के साथ साथ कदम आगे बढ़ाए, थोड़ी सी मेहनत करे, अमल करे, फिर अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह मेरे बस में जितना था इतना मैंने कर लिया, अब उसकी तकमील करना आपके कब्जे कुदरत में है, आप उसकी तकमील फरमा दीजिए। क्या अल्लाह ताला हमें मशक्कत में डालना चाहते? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि मेरा ये बंदा जरा सा मेरी तरफ चले, जब वो चलेगा तो हम खुद उसकी रहनुमाई करेंगे। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करेंगे हम उनका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले चलेंगे। जरा सी तवज्जो की जरूरत है। गीबत का यह आखिरी बात है, गीबत का एक अजीब अमली इलाज। फिर हजरत वाला ने आगे एक अजीब अमली इलाज बयान फरमाया। इलाज कड़वा तो है लेकिन अगर अल्लाह ताला इस इलाज की तौफीक दे दे तो चंद दिन में गीबत छूट जाएगी। गीबत का एक अजीब और गरीब अमली इलाज यह है कि जिसकी गीबत करे उसको अपनी इस हरकत की इत्तला कर दे। आय हाय, जिसकी गीबत करे उसको अपनी इस हरकत की इत्तला कर दे कि मैंने आपकी गीबत की है, बस थोड़े दिन उस पर मुदावमत से इंशाल्लाह मर्ज बिल्कुल दफा हो जाएगा। कौन करेगा? किसी को मार खानी हो तो करे, जब किसी शख्स की गीबत हो जाए, लेकिन कर लो, वो ऐसा इलाज है कि दोबारा फिर गीबत होगी ही नहीं। जब किसी शख्स की गीबत हो जाए जाकर उसको बता दो कि आज मैंने तुम्हारी ये गीबत की है। जिस वक्त जाकर ये बताएगा उस वक्त दिल पर आरे चल रहे होंगे, लेकिन ये आरा ही उस बीमारी का ऑपरेशन करेगा। अगर चंद मरतबा ये अमल कर लिया तो इंशाल्लाह ये बीमारी जड़ से निकल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी दूसरे से जाकर कहेगा कि मैंने तुम्हारी गीबत की थी, तो दूसरे आदमी के दिल में भी नरमी पैदा होगी कि शख्स चूंकि नदामत और पशेमानी के साथ मेरे पास आया है, चलो उसको माफ कर दो। चुनांचे गीबत के नतीजे में जो अदावत और दुश्मनी और जो गुस्सा पैदा होता है वो पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो देखा, ये सारी बातें चल रही थी गीबत और उसका इलाज। पॉइंट आज मजलिस 10 पर ये खत्म हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा बदगुमानी और तजस्सुस और उसका इलाज इंशाअल्लाह आएगा। तो देखो बहुत कीमती बातें थी, उसको बार बार सुने भी और सोचे और अपने आप को मशक करे। बहुत सारी बातें तफसील से आ चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और बाकायदा इलाज करावे। देखो इलाज के बगैर कोई चीज, आज हम जिस्मानी फिक्र करते हैं लेकिन अपनी ईमानी फिक्र नहीं करते। अपनी ईमान की फिक्र करो कि ईमान हमारा बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। सब जानते भी है और सब सोच भी रहे हैं लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा। इसलिए हजरत ने वो बात भी बता दी, बोले सोचने से आरजू करने से कुछ नहीं होता, हिम्मत करना चाहिए। मैं इतने दिनों से सबक दे रहा हूं लेकिन आज तक किसी का ये मैसेज नहीं आया कि मुझे इलाज करना है और इलाज का क्या तरीका है और मुझे भी उसमें दाखिल कर दो अपने पेशेंट में। आज कोई भी नहीं आ रहा है। ये इस बात की भी गफलत चल रही है। कब तक, कब तक? जब तक बीमारी का पता चल गया फिर क्यों नहीं? अगर आपको जिस्मानी डॉक्टर बता दे कि आपके आवाज से पता चलता है कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसी वक्त इंसान अपना सारा काम छोड़ेगा और इलाज करने में दाखिल हो जाएगा। आज रूहानी डॉक्टर ने बता दिया कि आपको पता है कि हम गिबत में मुब्तला है और गिबत इतनी सख्त बीमारी है कि हमारे ईमान का कैंसर है, लेकिन आज तक किसी का ये नहीं आया कि चलो हम इलाज करा। अरे ट्राई तो करे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे। थोड़ी देर मुराकबा कर लें।